अच्छा अब ये कौन लोग हैं जिनको ये मिलेगा, उनकी तो जिंदगी बन गई ना। कहते हैं ना कामयाब लोग, पर इसने कमाई कर ली, कौन है वो लोग? अल्लाह ताला ने अब उनकी बात बताई है, अल्लादीन तकौ से सिर्फ ने, अल्लादीन तकौ को तकवा क्या होता है? तकवा ये है कि इंसान अल्लाह के डर की वजह से गुनाह छोड़ दे और अल्लाह की मोहब्बत में नेकियां करे, बचने को तकवा कहते हैं, बच बच के चले। तो बचना यहाँ पे किससे? दुनिया की चकाचौंध में गुमना हो जाए कि इसके अंदर ही ना अपने आप को बचा के रखे अपने आप को। अब सिर्फ इतनी बात नहीं, अल्लाह ताला ने और भी इनकी कुछ क्वालिटीज बताई ताकि हमें पता हो ना, तो अब हमें जब ख्वाहिश है दिल में आ गई कि हमें भी अल्लाह ये मिल जाए, तो सिर्फ दुआओं से नहीं ये बात बनेगी, हम आगे देखें ये लोग हैं कैसे। मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ये चाहिए जन्नत, मुझे भी रिदवान मिन अल्लाह चाहिए, कैसे पाऊं इसको? कोई तरीका है? हाँ तरीका है, अल्लाह ने बता दिया। अल्लादीन यकूलूना, वो लोग जो कहते हैं। अच्छा ये अब कैसे लोग हैं जिनकी दुआएं कैसी होती हैं? तो दुआ जो होती है ना वो इंसान के दिल में जो होता है उसकी अक्कास होती है, यानी आप मैनिफेस्ट करते हैं जो आपके दिल में होता है दुआ के जरिए। अब दिल में अगर दुनिया है तो बस दुनिया ही दुनिया, वो जो इंसान हमने सूरह बकरा में पढ़ा था ना, जो बस कहता है रब्बाना आतिना फिर दुनिया, बस मुझे दुनिया दे दे अल्लाह, ये दे दे, ये दे दे, कारोबार फला, ये बस उसका यही चीज। और कोई लोग हैं उनकी दुआएं कैसी हैं? यकूलून रब्बाना इन्ना आमन्ना, ए हमारे रब बेशक हम ईमान ले आए। ईमान किस पे ले आए? अल्लाह पर, फरिश्तों पर, हमने ईमानियात की बात की थी ना पहले, किताबों पर, रसूलों पर, तकदीर पर, सब हम ईमान ले आए। फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, अल्लाह तुझसे इल्तजा है, अब तो हमारे गुनाहों को ढांप देना अल्लाह, हमारे गुनाहों को बख्श देना अल्लाह। अब उनको ना अपने गुनाहों से डर लगने लगता है कि ये गुनाह तो मुझे डुबो देंगे, अल्लाह मुझे तेरी मदद चाहिए, तू मेरे गुनाहों को मिटा दे। वाक़ेना अज़ाब अन्नार, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? अल्लाह बस आग के अब अज़ाब से बचा लेना। अल्लाह हम ईमान ला चुके हैं, अल्लाह हमें पता है जहन्नुम बरहक है, जन्नत बरहक है, क़यामत का दिन बरहक है, अल्लाह ताला तेरे वादे हक हैं, या अल्लाह तू हमें आग से बचा लेना। तो यानी उनका गम क्या बन जाता है? उनका गम है क्या कि ये गुनाह जो हमारे ऊपर है ये हमें डबो ना दे, हाय गुनाहों का बोझ। वो अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं फिर, और वो जहन्नुम की आग से डरते हैं, वो अल्लाह ताला से इल्तजाई करते हैं कि हमें बचा ले। सुभान अल्लाह। और उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं? अब ये कुछ क्वालिटीज बता दी गई, पांच क्वालिटीज हैं ये बता दी गई, और ये छठी उनकी ये दुआ है, वहां पे भी छह चीजें थी ना, यहाँ पे भी छह चीजें बता दी गई। ये क्वालिटीज वो हैं कि किसी के अंदर ये जरूरी नहीं कि सारी पीक पे हूं, बल्कि किसी में कोई एक ज्यादा हो सकती है, किसी में कोई एक कम। जैसे मैंने आपको शहवात का भी बताया, कोई एक ज्यादा होगी, कोई एक कम होगी, या यहाँ पे भी कोई मे भी सबर में ज्यादा हो, कोई मे भी सच्चाई में बहुत ज्यादा हो, कोई मे भी इतात गुजारी में बहुत ज्यादा हो। तो हर एक की डिफरेंट वो हो सकती है कि कौन कितना किस किस वाले फील्ड में बहुत आगे पहुंच गया। असाबिरीन, सबर करने वाले, सबसे पहली बात ही सबर करते, क्योंकि कोई नेकी हो नहीं सकती सबर के बगैर, गुनाह से बचा जा नहीं सकता सबर के बगैर। गालिबन मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबर कितनी किस्म का होता है, पता है आपको? सबर तीन किस्म का होता है, इसको आपने याद रखना। सबर के वैसे होता क्या? अपने आप को कंट्रोल करना नेगेटिव चीजों से, रोक लेना, थाम लेना खुद को, आप पे से बाहर नहीं होते जाना कि कोई भी चीज हो, चाहे खुशी मिले चाहे गम मिले, खुशी में भी सब्र चाहिए, कंट्रोल करो खुद को। ये नहीं कि नाचने खड़े हो गए, ये नहीं कि दीवाने हो गए, पागल हो गए, खुद को समझ ले, ब्रेक लगाने का नाम सब्र है। तो सब्र इस्तकामत को भी कहते हैं, चलते रहना। तो सब्र जो तीन किस्म का है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। पहला सब्र क्या है? नेकी पे जम जाना, जम जाना नेकी पे, यानी कि एक दिन किया, दो दिन किया, रमजान में बहुत जोश आया, बड़ा कुछ किया, उसके बाद भी सोचा भाई करेंगे बड़ा, उसके बाद कुछ याद ही नहीं है। इसके लिए सब्र चाहिए, जम जाना, इंसान उस पे इस्तकामत रखे, इंसान बर्दाश्त करे जो के मुश्किलें हैं उस रास्ते में। मिसाल के तौर पे तहज्जुद के लिए उठना, पहले भी तो सहरी के लिए उठते थे लेकिन अब नींद बहुत आ रही है, एक इंसान बर्दाश्त करे ना, उठे फिर अपने आप को उठाए, तो नेकी पे जम जाना ये सबर है। इसी तरह गुनाहों पे भी सबर होता है, नंबर 2, यानी जो गुनाह करने का आपका जी चाहता है आप नहीं उसको करते, रोक लेते अपने आप को, बांध लेते हैं, नहीं मैंने नहीं करना, ये भी सबर है। इसमें मजा आता है मुझे, लोग भी सारे कर रहे हैं, ये तो आजकल बहुत इन है, ये कौन सी बिग डील है, चाहे कितने भी ऐसे ख्याल आते हैं, मगर इंसान खुद को रोके किस लिए, इसलिए नहीं कि वो आपकी हेल्थ के लिए बैड है, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए नहीं कि फिर मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए कि अल्लाह को नहीं ये पसंद, इसलिए कि अल्लाह को नहीं ये पसंद, इसलिए नहीं कि ये लोग कहेंगे अच्छी कुरान पढ़ने वाली है, इसने तो हिजाब भी नहीं लिया हुआ, तो मैं जल्दी से ले लेती, किसी ऐसी जगह जाऊंगी जहां पे ये लोग नहीं होंगे तो फिर उतार दूंगी, ये फिर वो सब्र नहीं है। गुनाह से बचना अल्लाह ताला के लिए। अब आजकल ना बहुत सारी चीजें आप देखें, इतनी गुनाहों की जो अल्लाह की नाफरमानी की है, इतनी कॉमन हो रही है, कॉमन हो रही क्या हो चुकी हैं कि वो बुराई बुराई नहीं लगती। ऐसे में इंसान के लिए वाकई बहुत ज्यादा सब्र चाहिए कि वो अपने आप को बांध के रखे कि सारी दुनिया कर रही है, मैंने नहीं करना, बस वो भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, लेकिन मुझे नहीं करना, क्यों, इसलिए कि ये गुनाह है, अल्लाह ने इसे मना किया है, मुझे इसे बाज रहना। अब बेशुमार ऐसे काम है, कुछ आपको मिसाल दूं, वैसे तो आप बहुत सारी मिसालें, आपने रासिखूना फिल इल्म बनना है तो आपने बहुत सारी मिसालें अपने इर्द गिर्द नोट करनी है, अपने पास नोट करनी है, कौन सी वो चीजें हैं जिनके ऊपर मैं सब्र नहीं कर पाती, लेकिन आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, जैसे बाहर बंद समर के निकलना, सब निकलते हैं ऐसे ही, सब पूरा पूरा अपने आप को रखते हैं इस तरह टिप टॉप और फिर जाते हैं बाहर, तो मैं क्यों रुकूं। अब यहां पे आएगा सबर, अगर सबर होगा ना तो फिर इंसान कहेगा नहीं अल्लाह की नाफरमानी है। सारे लोग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं, आप कहते हो सारे ही डालते हैं, इसमें क्या बात है, अल्लाह ताला ने तो औरत को छुपी हुई चीज बनाया, जितना ज्यादा इसको छुपाओ उतना बेहतर है, ये नहीं कि अपनी नुमाइश करो, अपनी तस्वीरें लगा के उन जगहों पे कि जहां पे वो सबके लिए ओपन है, कोई भी जूम करे वो शायद आपके चेहरे को कोई आदमी वैसे तो ना इतने गौर से देख सकता हो कि डर जाएगा कि पता नहीं थप्पड़ी ना मारते, लेकिन वो कंप्यूटर पे जूम करके देख सकता है, आपके सारे फिगर को देख सकता है, आपके ने पूरा बन संवर के अपनी पिक्चर्स लगाई हुई है, सबको देख सकता है, कितना कॉमन है ना ये, तो क्या बुराई है इसके अंदर, सभी तो करते हैं, सब सब कर रहे हैं ना, तो ये तो बुराई ही नहीं रही फिर, सब करने से बुराई की बुराई होना खत्म हो जाए, ये नहीं होता, बुराई वो है जो अल्लाह ताला ने जिसको नापसंद किया, जिसको अल्लाह ने मना किया। हम सोचते हैं बुराई वो है सिर्फ जिसको माशरा कह दे कि ये बुरा, जिसको माशरा एक्सेप्ट कर दे ना वो तो बुराई ही नहीं है, हम बुराई को किस पैमाने से देखते हैं, खुद बताएं किससे नापते हैं, क्या एक्सेप्टेबल है माशरे में, वो अच्छाई है हमारे नजदीक, चाहे वो कितना ही गलीज काम हो, और क्या है हमारे नजदीक जो कि बुरा है, वो बुरा है जो लोग जिसको बुरा कहते हैं। अब जिन चीजों को लोग नहीं बुरा कहते हमारे नजदीक भी नहीं वो बुरी, अल्लाह ताला जो भी कहता रहा, क्योंकि मेरे पैमाने ही नहीं है वो, फिर मेरा क्राइटेरिया ही वो नहीं रखा जो कि अल्लाह की पसंद या नापसंद का हो, कि फिर हम ख्वाहिशात करते हैं रिदवानों मिन अल्लाह की जन्नात तजरी मिन तहती अल अनहार की, जबकि हमने अपनी जिंदगी का क्राइटेरिया ही वो नहीं बनाया कि अल्लाह ने किसको पसंद किया और किसको नहीं किया, अल्लाह क्या बताता है, हमारी पसंद में ना, या नापसंद, या जायज या नाजायज, या बुराई या भलाई, या तो हमने खुद डिसाइड कर लिया वह जो हमारे दिल में आता है, या लोग डिसाइड करते हैं, जो सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं। तो सबर, उस वक्त सबर करना। और फिर तीसरा सबर तो आपको पता है, अजियत के ऊपर, मुश्किलों में सबर करना, मसाइब में सबर करना, हालात में अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते हैं उसमें सबर करना। वावेला नहीं मचाते फिरना, शोर नहीं मचाते फिरना, दुहाइयां नहीं देते फिरना, शिकायतें नहीं करते फिरना। वलकानितीन, और कुनूत करने वाले, इताअत गुजार। एक तो होता है वैसे भी इताअत गुजारी होती है ना, नहीं सॉरी, सादिकीन, सादिकीन रह गया, सादिकीन सच्चे, वो जो अपने आप से भी सच्चे हैं। बाज लोग तो अपने आप से भी सच नहीं बोलते, अपने आप को भी एडमिट नहीं करते कि ये मेरे अंदर बुराई है, ये मैंने फिक्स करनी, नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, नहीं, मैं तो ऐसे नहीं करती, नहीं मैं तो ऐसी हूं ही नहीं। तो खुद से तो सच बोल लो, नहीं मेरे अंदर तो कोई ये मोहब्बतें है ही नहीं है, मैं तो बस, मेरे अंदर कोई लालच ही नहीं है मेरे अंदर। अपने आप से ही अगर सच नहीं बोलोगे तो अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? हम अपने आप से नहीं सच बोलते, अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, अपने आप को भी झूठी तसल्लियां देते हैं। कितनी बुरी बात है, दूसरों से तो झूठ बोला, अपने आप से भी झूठ बोला। कम से कम हम अपने आप से तो सच बोले, अपने आप को तो खुद आईना दिखाएं कि ये है सच्चाई, ये है मेरी हकीकत। फिर इसी तरह इंसानों से सच बोलना, इंसानों में सच्चाई। देखे, एक जुबान पे भी झूठ होता है और एक जिंदगी भी झूठी होती है। जिंदगी कैसे झूठी होती है? जब वो आप बन बन के दिखाते हैं जो आप नहीं है, वो झूठी जिंदगी है, वो रियाकारी ही है, वो आप अपने आप का दिखावा करते हैं। तो लोगों से भी झूठ ना बोले, जिंदगी भी झूठी ना गुजार, जुबान पे भी झूठ ना रखे, अमल में भी झूठ ना आए। वलकानितीन, और इताअत गुजार। जब कानित, एक इताअत गुजार वो होता है कि बस अल्लाह का हुक्म आया, मान लिया, ठीक है मान लिया। एक वो होता है कानित के समेना वातोना, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, इस काला लहू रब्बू अस्लिम, खाला असलम तो ले रब्बिल आलमीन। तो उसने कहा मैं इस्लाम लिया, मैं मती हो गया, मैं फरमा बरदा अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, जो रेडी होता है ना इताअत करने के लिए, उसको कहते हैं कानित। जो यस सर करने वाला हो, जो इंतजार करे, अल्लाह को कम आया मैंने ये कर लेना। आप देखिए, हम जो पेरेंट्स जितने बैठे हैं वो बड़े अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं। हम अपने बच्चों को बात कहते हैं ना कोई, तो एक बच्चा वो होता है कि अभी बात मुंह से निकाली तो वो दौड़ा जल्दी से करने के लिए, और दूसरे बच्चे जो आजकल ज्यादातर हैं कि आप एक दफा कहते हैं, दो दफा कहते हैं, बेटा तुम्हें पहले भी ये कहा है, बेटा तुम्हें ये कहा, कर तो लेगा लेकिन आप कितनी दफा कहते हैं फिर करता है, वो कानित नहीं है। कानित वो है जो दौड़ के करता है, जो इशारा समझ लेता है, वो होता है कानित। तो मैं और आप कानित हैं? हम कितनी बातें सुनते हैं, कुरान की पढ़ते हैं, नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं अभी नहीं, फलां वक्त आ जाए, नहीं हाँ मुझे पता तो है लेकिन देखे ना अभी जरा, अभी मेरी एज नहीं है ये करने की, अभी शादी हो जाए, अभी फलां फंक्शन गुजर जाए, ये कानित होना नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये सिर्फ पढ़ने की बातें नहीं है कि हम बोले सब साबिरीन सादिकीन कानितीन, चलो जी आज का सबक खत्म हुआ, और मैं क्या लेके उठी, कुछ भी नहीं, जीरो। तो इसको क्या करना है? असल बात यह है कि ये जो चीजें, इनके पैमाने पे खुद को हम रख रख के देखें, मैं कितनी सबर करने वाली हूँ, बुराई पे कितना सबर करती हूँ, नेकी पे कितना जमती हूँ। अब आई हूँ क्लास में, ये नहीं कि 4 दिन का शौक है पर उसके बाद क्लास छोड़ के तो जा रहे हैं, इसके लिए भी सबर चाहिए। मैं कितना सच बोलती हूँ, अपने आप से भी बोलती हूँ या नहीं, और लोगों से कितना सच बोलती हूँ। वलमुनफिकीन, और खर्च करने वाले, खर्च किस में, खर्च तो सारे ही करते हैं लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, यानी ये भी वो कर सकता है, याद रखे, जो कि आखरत पे ईमान रखता हो। इसलिए कि इंसान का अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करना अल्लाह के रास्ते में, जबकि उसका रिटर्न अभी नजर नहीं उसको आ रहा होता,
ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस वक्त उसको बिलीफ होता है ना उसका, कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, जैसे मुझे किसी ने पिछले दिनों कहा कि एक बिल्डर है, उसने उनके करीब जिस स्टेट से भी वो कॉल कर रही थी, उन्होंने कहा हमारे करीब यहाँ पे एक बिल्डर ने बिड लगाई इस लैंड के लिए और दूसरे बिल्डर ने उससे डबल की बिड लगा दी, और कहते दूसरे ने ले ली वो लैंड और अब वहां पे वो घर बना रहे हैं। भला क्यों वो डबल की बिड लगाएगा? हम सब जानते हैं, सब इसका आंसर पता है, इसलिए कि उसको पता है जो मैं घर यहाँ पे बनाऊंगा ना, वो जो बिकेंगे तो वो इससे कहीं ज्यादा मैं मुनाफा कमा लूंगा, इसलिए लगाया ना उसने, वरना कौन लगाएगा? वो अपने पैसे ना बचा के रख लेता, क्यों उसने इतनी बड़ी रकम लगा दी कि डबल करके लगा दी? इसी तरह जो लोग जानते हैं ना कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, वो कहता है कि मैं दुनिया में भी दूंगा तुम्हें 10 गुना करके और आखिरत में तो 70 गुना करके दूंगा जो तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे, ये कहीं मेरा मिट नहीं रहा, ये तो मुझे मिल जाना है। इसका आपको यकीन है कि वो वहां पे लगाऊंगा तो वो तो पता नहीं कल को मकान बिके या नहीं बिके, अल्लाह जाने इकोनॉमी का क्या हाल हो, अल्लाह बेहतर जानता है, कोई जलजला ना आ जाए, कोई कुछ ना हो जाए, कोई सब कुछ ही मिट ना जाए, लेकिन देखो वो कितनी मतलब ट्रस्ट करके कि सब ठीक रहेगा और वो उसके अंदर लगा रहा है। हमें अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं आता कि अल्लाह ने वादा किया है वो क्यों नहीं देगा, वो देगा, ये मेरे से जा नहीं रहा, ये तो मैं 10 गुना इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। लोग रिटायरमेंट प्लान के लिए कितनी वो लेते हैं ना प्लान्स के, रिटायरमेंट के लिए ये भी मेरा रिटायरमेंट के प्लान है, ये भी फलान जगह इन्वेस्ट किया हुआ, ये भी रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा, आज तो कुछ नहीं मिल रहा होता। रिटायरमेंट किसने देखी, जिंदा भी रहना है कि नहीं रिटायर होने तक, लेकिन कहते नहीं, उस वक्त हमें बड़ी जरूरत होगी ना, उस वक्त तो कमाई नहीं हो सकती तो मैं रिटायरमेंट के लिए रखा। हालांकि जिंदगी हमारी कितनी मुख्तसर है, हम देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, लेकिन हम करते, ये नहीं कि कोई गलत बात है, करें आप जरूर, लेकिन देखो कि हमें उसका जिस वक्त का हमें यकीन भी नहीं है कि आना भी है कि नहीं हमारी जिंदगी में रिटायरमेंट का टाइम, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट जो अल्लाह के पास होनी है कि वहां पे तो कोई कमाई हो ही नहीं सकती, वो तो सर्टेन है, वो तो यकीनी है, उसके लिए कोई प्लान नहीं, किसी प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उसके लिए नहीं लगाते। तो ये तो खर्च करने वाला वो ही है जो अल्लाह के वादों को सच जानता है, जो उसको पता है अल्लाह ने वादा किया है ये मुझे वहां पे जाके 70, 700, और अल्लाह का ये भी फरमान है कि बाज को अल्लाह बेहिसाब भी दे सकता है, और 70 गुना तो डेफिनेटली है। वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, और वो जो बख्शिश मांगने वाले हैं सहरी के वक्त खास तौर पे, देखिए वैसे तो आप बख्शीश किसी वक्त भी मांग सकते हैं, अभी भी बैठे हुए इस्तगफार कर सकते हैं, सहरी के वक्त जो लोग इस्तगफार करते हैं उनकी अल्लाह ताला ने खास तौर पे तारीफ फरमाई है। इसी तरह सूरह जारियात में आप चेक करिएगा, वहां पे भी सहरी के वक्त इस्तगफार करने वालों की अल्लाह ताला ने फजीलत बताई है। यहाँ पे भी क्योंकि ये वो टाइम है फजर से पहले का, सब सो रहे होते हैं, सुकून होता है, इंसान फोकस कर सकता है, और अल्लाह ताला भी उस वक्त मुतवज्जे होते हैं, जो हम हदीस में हमने पढ़ा हुआ है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नजूल फरमाते हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई है मेरा बंदा जो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसको अता करूं, कोई है जो बख्शिश मांगने वाला है तो मैं उसको बख्श दूं, कोई है जो सवाली तो मैं उसकी मांग को पूरा करूं, यानी अल्लाह देने के लिए तैयार होता है। सिर्फ इस्तगफार ही नहीं, इनका तो गम ही इस्तगफार है ना, लेकिन जो भी आपने मांगना है, जो आपके प्रॉब्लम है, जो आपकी वरीज है, उस वक्त उठ के अल्लाह को कहें, अल्लाह देने उस वक्त देने को तैयार है, उसने अपने दर खोले होते, वो करीब होता है। तो लेकिन ये भी वही जाग सकेगा, उठ सकेगा जो कोई टाइम पे रात को सोएगा, जब आपने पूरी रात ही इस मसरूफियत में गुजार दी कि मूवीज देख रहे हैं, अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं, गपशप हो रही है, चाय के दौर चल रहे हैं, आपने रातों को दिन बना लिया, और जब फजर के करीब टाइम जाने लगता है जो खास इसका टाइम है, उस वक्त सो जाते। अब फजर ही अक्सर लोग नहीं पढ़ते तो इस टाइम पे उठना दूर की बात है, लेकिन ये लोग देखें कि सुबहान अल्लाह ये इस्तिगफार करते हैं सहरी के वक्त उठ के, यानी सोचें कि क्या चीज है जो उनको उनके बिस्तरों से उठा देती है, उनको गुनाहों का इतना होता होगा ना बोझ, अल्लाह मैं कुछ नहीं, अल्लाह ताला मेरे पास कुछ नहीं, देखें ये इस्तिगफार ही कौन लोग कर रहे हैं, जो साबिरीन हैं, जो वैसे भी दुआएं करते रहते हैं, फिर लाना दुनोबा माना के नादा बन्नार, जो खर्च भी करते हैं, जो इताद गुजार, लेकिन वो इस्तगफार भी करते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि इनको इस्तगफार की क्या जरूरत है, जो अच्छे भले ही लोग हैं। नहीं, इमाम इब्नुल कय्यम फरमाते हैं, तुम्हारे अमल के कबूल होने की निशानी ये है। सोचें, तुम्हारे अमल के कबूल होने की उन्होंने एक निशानी बताई है। आप सोचे ना, मेरा अमल कबूल हुआ कि नहीं हुआ, निशानी यह है कि तुम्हें अपना अमल बहुत हकीर नजर आए, ना काफी नजर आए, कम तर मालूम हो, हत्ता के अल्लाह के नेक बंदे पर नेकी करने, हर नेकी करने के बाद इस्तगफार करता है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, वो नेकी करने के बाद भी इस्तगफार करते हैं। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से सलाम फेरने के बाद फरमाया कि सुन्नत क्या है, अल्लाह अकबर एक दफा और 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या किया आपने? कोई गुनाह किया? नहीं। लेकिन अल्लाह, जिसको पता चल जाए ना, अल्लाह तेरा हक तो बहुत बड़ा है, या अल्लाह मैं तेरा हक नहीं अदा कर सकी, या अल्लाह ये मेरी नमाज तो इस्तगफार के ही काबिल है। मैं तो हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो कहते हैं हमने 2 नफल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ना है, 2 नफल सहाबा के लिए पढ़ना है, 2 नफल ताबीन। और ये नफल तो मेरे और आपके भी अगर मुंह पे ना दे मारे जाएं तो बड़ा गनीमत समझें, ये कहाँ उनके काबिल है। वो खुदा का खौफ करो, इतनी बड़ी एक लिस्ट मिल गई रमजान में जी, ये आप नफल पढ़े रातों को ईद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो क्या बात करते हो, ये नफल अपने देखो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, अपने नफल देखो और सहाबा की शान देखो, ये उनके लिए आप पढ़ रहे हैं ये नफल। ये तो हमें भी बचाने के काबिल ना हो। तो ये इस्तिग़फ़ार करते हैं, और फिर देखें आप क़यामुल लैल के लिए आपने देख लिया यहाँ पे कि तहज्जुद के वक्त भी उठ के इस्तिग़फ़ार करते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ने इनकी तारीफ की है कि अल्लाह के आगे किस तरह। और वाकई जो इंसान ना अल्लाह ताला का अजमत उसके दिल में आ जाए, या अल्लाह का कितना हक है हमारे ऊपर इसका अंदाजा हो जाए ना, उसको फिर अपना अमल हकीर ही लगता है। कभी नहीं हो सकता कि वो ये कहे कि नहीं जी मैं तो बहुत बड़े काम करती हूँ, मैं तो ऐसे हूँ। नहीं, वो कभी तारीफें कर ही नहीं सकता अपने कामों की, उसको हकीर ही लगते हैं। क्या है हमारे अमल, और वाकई क्या है, खुद सोचे हम क्या चीज। अल्लाह के हक को तो छोड़े, हम अपने सिर्फ अमल को कंपेयर ही कर लेना अगर सहाबा के अमल से, ताबईन के अमल से, तो उनके अमलों के आगे भी हकीर हैं, हालांकि वो भी अल्लाह का हक नहीं अदा कर सके। इवन अंबिया भी अल्लाह का हक नहीं दे सकते। आप सल्लम ने भी फरमाया कि मैं भी दिन में 100 दफा इस्तगफार करता हूँ। आप सल्लम ने भी ये फरमाया कि मैं भी जन्नत में अल्लाह की रहमत से ही दाखिल हो सकता हूँ। उन्होंने भी अपने अमल पे मान नहीं किया। तो अगर वो अल्लाह का हक नहीं दे सके, तो हमारे जैसे लोग चाहे सारी जिंदगियां कुछ भी करते रहे, हम कैसे दे सकते, हम कहां से अपने किसी अमल को समझ सकते हैं, हमारा कोई अमल किसी काबिल है? तो ये तो अल्लाह ताला की अजमत का ख्याल करें और अपने आप को देखें और अपने अमाल को देखें, तो फिर हम वाकई सिर्फ इस्तगफार ही करते रहे। और अगली आयत बहुत अहम आयत है, इसलिए कि आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताएं आप कैसे कह सकती हैं कि अल्लाह ही इबादत के लायक है और कोई इबादत के लायक नहीं, बड़ा आप दावा करती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, व्हाट इज द आंसर? आप क्या जवाब देंगी बताएं? आपके पास क्या दलील है? नहीं जी, आपको दलील देना, ऐसे तो कहने की बातें क्या होती हैं, नहीं जी अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, आप कहाँ से दलील दे सकती हैं? कोई है आपके पास दलील? तब आप क्या कहती हैं कि हाँ अल्लाह ताला ने क्या दलाइल दिए हैं। याद रखिए इन बातों को, कभी आपको कोई पूछ सकता है, आपके बच्चे ही आपको पूछ सकते हैं, कल को कोई क्वेश्चन करे आपका बच्चा, आप क्या कहेंगी आगे से? आप कैसे कह सकती हैं कि आप ही सच कह रही हैं? आप क्या क्या आपके पास दलील है इसकी? आपका ही दीन सच्चा है, एक अल्लाह को आप मानते हैं, वो ये सच्चाई की बात है। देखें, एक तो सबसे पहली बात ये कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, एक मेरा नजर टाइम पे है और एक आयतों पे, और मैं सोच रही हूँ कितना कुछ है बताने के लिए, लेकिन अच्छा अल्लाह तो बरकत दे। तो एक तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रख दिया ये फितरत में हमारी, कि अल्लाह ताला ने जो अहदे अलस्त हमसे लिया था ना, कि अल्लाह ताला ने हमसे पूछा था जब हम एक रूहें थे कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो हमने सब ने इकरार किया था। अब हम कहेंगे वो लो हमें कौन सा वो याद है इकरार करना, तो आपको ये याद है कि आप मां के पेट में 9 महीने रहे थे? नहीं याद ना? तो आप यकीन करते हैं? क्यों यकीन करते हैं? आपको बताया गया कि आप रहे थे, आप जानते हैं आप रहे थे, हालांकि आपने देखा नहीं, आपको याद भी नहीं है। इसी तरह हमें किसने याद दहानी कराई है? अंबिया ने, किताबों में अल्लाह ताला ने उतारा, ठीक है। दूसरी, अल्लाह ताला ने कायनात में निशानियां रख दी जो कि हमें बताती हैं कि एक अल्लाह है जो इनका पैदा करने वाला है, वरना एक से ज्यादा रब होते एक ना होता। सबसे पहले तो वहदानियत के ऊपर आओ ना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इस कायनात में एक से ज्यादा इला होते, ला फसदता, इसमें फसाद पैदा हो जाता। अगर आसमानों जमीन में कोई और भी इला होता तो एक ने कहना था ये करो, दूसरे ने कहना था ये करो, एक ने कहना था मेरी इबादत होनी चाहिए, दूसरे ने कहना था नहीं मेरी होनी चाहिए, दोनों की आपस में ठन जाती तो ये कितना फसाद होता। ये जो आप देख रहे हैं आसमानों के निजाम कितने हार्मनी से चल रहा है, कितना सुकून है ऊपर, ये हो सकता था क्या? तो अच्छा, अब और क्या इसकी दलाइल है? और अल्लाह ने कुरान में इसकी दलील दी है क्या, कि अल्लाह ताला खुद गवाही देता है कि उसके सिवा इस कायनात में कोई इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह से बड़ी सच्ची गवाही किसी की नहीं हो सकती। शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह गवाही देता है। और शाहिदा के माना ये नहीं, सिर्फ शाहिदा का माना एक माना है गवाही देना, अल्लाह गवाही देता है। नंबर टू, शाहिदा बमाना हकमा, अल्लाह ताला का ये हुक्म है, सिर्फ उसने गवाही नहीं दी, अल्लाह का ये हुक्म है कि उसके अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं। झूठे तो लोग माबूद बनेंगे ही, झूठे माबूदा ने बातिल तो होंगे ही, लेकिन बरहक रब, बरहक माबूद, माबूद कौन होता है, इलाह कौन होता है? जिसकी इबादत की जाए, जो इबादत के लायक हो, जिसकी पूजा की जाए, वो सिर्फ अल्लाह है। फिर नंबर थ्री, शाहिदा का मतलब क्या है? यकीनी बात की खबर देना, इत्तिला देना, यकीनी बात हो, जो कंफर्म बात हो, अल्लाह ताला वो कंफर्मेशन दे रहा है। फिर नंबर फोर, शाहिदा का माना यहाँ पे है वाजे कर देना, बयान कर देना, जो वाकई जो कंफर्म बात है उसको बयान कर देना। और अल्लाह ने बयान भी कर दी। कैसे बयान की? रसूलों के जरिए, जमीन में निशानियां रख के, फितरत में इंसान के रख के, रसूल भेज के अल्लाह ने बयान कर दी। तो शाहिदा के ये सब माने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा फीदा बढ़ा दिया। अब अल्लाह ताला ने खुद बयान किया, खुद हुक्म दिया, खुद गवाही दी, खुद इतला दी है, उससे ज्यादा तो किसी का इल्म नहीं है ना, कि कोई इलाह है ही नहीं, इल्ला हुआ, मगर वो ही इलाह है। और क्यों ये गवाही देता है? वल मलाइका तू, और मलाइका भी गवाही देते हैं, फरिश्ते भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। वह उलुल इल्म, और इल्म वाले भी गवाही देते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी फजीलत हमें पता चल रही है इल्म वालों की, क्योंकि इल्म वाला उसकी शहादत को अल्लाह ने अपनी शहादत और मलाइका की शहादत के साथ रखा है। कि जो इल्म वाले होते हैं ना, वो पहले भी हमने रासिखूना फिल इल्म की बात पढ़ी थी ना, कि रासिखूना फिल इल्म क्या कहते हैं? वो कहते हैं सा कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, सब चीज हमारे रब की तरफ से। इल्म आने के बाद इंसान में कितनी बड़ी तब्दीली आती है, वो बेइल्म की तरह नहीं होता, फिर वो जाहिलों की तरह नहीं होता। देखो, इल्म आने के बाद जब जितना इंसान इल्म लेता रहता है, उसको पता चलता है, इवन ये सिर्फ इल्म, ठीक है यहाँ पे तो दीन के इल्म की बात है, लेकिन इवन वो लोग जो वाकई हर तासुब से पाक होके इल्म लेते हैं ना, सितारों का, सैयारों का, सूरज चांद दिन का, वो भी कहते हैं कि कोई एक ही जात है जो इसको चलाने वाली। मैंने खुद साइंटिस्ट की स्टेटमेंट्स पढ़ी, ठीक है, वो इस्लाम नहीं लेकर आए, लेकिन वो ये मानते हैं, वो ये गवाही देते हैं कि हमने जितनी अभी तक ये स्टडी की है, उसके बाद है कि कोई इसका चलाने वाला है जो बियॉन्ड दिस है, इससे बाहिर है, वो इसका हिस्सा नहीं है, इस टाइम का, इस स्पेस का हिस्सा नहीं है, वो इससे बाहिर है कहीं। ये खुद साइंटिस्ट कहते हैं। यानी इतना इल्म उन्होंने लिया, फिर उनको ये पता चला कि वाकई, इसीलिए आप कायनात की निशानियों में भी गौर और फिक्र करें तो आप तौहीद को पहुंच जाते हैं, और आप गवाही दे सकते हैं कि एक है कोई जो इसको चलाने वाला है। तो इल्म की बड़ी फजीलत है। इल्म इसलिए आप इल्म हासिल करें, ये दर्जों की बुलंदी का सबब बनता है। देख लें कहाँ तक इल्म वालों के दर्जे पहुंच गए। माल के लिए जैसे हम हिर्स करते हैं ना कि माल मेरा और बढ़ जाए, इल्म के लिए शौक बढ़ाएं। इल्म सिर्फ इसलिए ना लें कि हाँ बस मैंने ये कोर्स करना है, ये कोर्स मुकम्मल हो जाए, मेरा मेरी सर्टिफिकेट बस मिल जाए, चलो सर्टिफिकेट ना भी बस कोर्स हो जाए, बस मैंने पढ़ लिया ना बस ठीक है। नहीं, इल्म वाले बनने की ख्वाहिश करें। कितनी आपको अहादीस बताई हैं इल्म हासिल करने वाले के लिए, कैसे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। अल्लाह अकबर, इससे बड़ा क्या ऑनर हो सकता है कि फरिश्ते पर बिछाएं, इनको इतना प्रोटोकॉल दें, वो इतना इनकी ताजीम करें। इल्म हासिल करने वाले के लिए देखिए आसमानों जमीन की तमाम चीजें, हत्ता के समंदर की मछलियां भी आलिम की मगफिरत की दुआ करती। और आलिम कैसे बन सकते हैं? आलिम ऐसे नहीं बनते। आलिम कोई वो नहीं नाम होता कि आपने कोई आलिम का कोर्स कर लिया तो आप आलिम बन गए। इल्म लेना, और इल्म जो लेना होता है ये इस तरह के कामों से नहीं होता कि बस आए क्लास खत्म की उसके बाद पता ही नहीं अगले जुमे तक बस सोए पड़े हैं, उसके बाद नहीं कोई जागेंगे अगर उस दिन ही कुरान खोलना है। नहीं, शौक है आपके अंदर तलबे इल्म का, मैं इल्म वाली बन जाऊं, मेरे लिए समंदरों की मछलियां मेरे लिए भी दुआएं करें, मेरे लिए भी फरिश्ते पर बिछाए। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर चलाता है। एक और हदीस में आता है चींटियां भी अपने सुराख में इनके लिए दुआएं करती हैं। अब आप देखें इतनी बड़ी इल्म की फजीलत, इतना बड़ा इल्म वालों का मकाम आपको इस आयत से पता चल रहा है कि अल्लाह ने उनका भी जिक्र फरमाया, उनकी तारीफ फरमाई है। तो क्या आप नहीं बनना चाहते इल्म वाले? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अल्लाह ताला ने किस चीज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि इसकी में इजाफा मेरे से मांगो। अगर इल्म से बढ़ के कोई चीज होती इस दुनिया में बड़ी नेमत, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आया नबी आप वो मांगे। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुर रब्बी जिद इल्म। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हल यस्तविल्लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। आप कह दें लोगों को कि इल्म वाला और बेइल्म बराबर नहीं होते, अल्लाह की नजर में दोनों में बड़ा फर्क है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला जिस शख्स के लिए के साथ खैर का इरादा करता है उसको दीन की समझ दे देता है। इतना इल्म वालों का तो दर्जा है। और फरमाया सूरह फातिर में अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। तो इल्म कैसे लें फिर, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यहया बिन कसीर फरमाते हैं इल्म जिस्म की राहत के साथ हासिल नहीं किया जा सकता। समझ आई? इल्म जो है ला यस्ततियाल इल्म बी राहत इल जसद, ला यस्तताउ यानी नहीं इंसान पा सकता हासिल कर सकता इल्म बी राहत इल जसद। जसद ये जिस्म की राहत के साथ, कि आप लेटे हुए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि बस मैं क्लास ले लूं, आप इधर चैटिंग भी कर रहे हैं और साथ आपकी क्लास भी चल रही है, आपकी टेक्सटिंग भी हो रही है और क्लास भी हो रही है, कोई तवज्जो नहीं है। ये इल्म के अदब के खिलाफ है। इल्म के भी कुछ आदाब होते हैं। अब अदब नहीं है अगर इल्म लेने का ना तो इल्म नहीं आएगा। साथ साथ बातें भी कर रही हैं, घर में बच्चों के साथ भी बातें हो रही हैं, घर वालों के साथ भी बातें हो रही हैं, साथ मेरी क्लास भी चलती जा रही, मैं बड़ा इल्म ले रही। शायद आप कोई लिसनर तो हो सकते हैं फिर, कि छोटी बड़ी थोड़ी बहुत कोई अच्छी बात आपके कानों में पड़ जाए। इल्म वाले नहीं कभी बन सकेंगे। इल्म वाले बनने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक, इल्म के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है, सीरियस होना पड़ता है। नंबर टू, इल्म थोड़ा थोड़ा करके आता है, ये ऐसे ओवरनाइट नहीं आ जाएगा कि आप कहेंगे हाँ आज मैंने रात को क्लास लेके सोई हूँ या पढ़ के सोई हूँ तो सुबह मैं आलमे दीन बन के उठ जाऊं। नहीं, ये थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके आएगा और फिर आपको एक दिन पता चलेगा कि हाँ मुझे कुछ आ रहा है। अभी आपको महसूस नहीं होगा लेकिन आपके अंदर आता जाएगा आता जाएगा। और एक दिन आप कुछ कहीं बैठेंगे, आप कुछ बोलने के काबिल होंगे तो आपको होगा मैंने कहाँ से ये सीखा, वो आपको याद भी नहीं है वो कब आपके अंदर आता गया। तो इल्म वाले बनने की ख्वाहिश किया करें, ठीक है? ये छोड़ दें चीजें, अब जो लोग तो माशाल्लाह दूसरी तीसरी दफा कर रहे हैं, अब ये छोड़ दें ये सर्टिफिकेट ये फलां ये कब खत्म होगा ये क्या, नहीं ये छोड़ दें, या बस एक एक दफा पढ़ लिया बस हमारे लिए काफी होगी। नहीं, उसकी डेप्थ में जाए ना, आपको एक डायरेक्शन दे दी जाती है कि इस इन लाइंस पे आप सोचें, अब आगे उसके अंदर तदब्बुर करना आपका काम है ना, उसके बाद उन आयतों को खोलें। जैसे अब मैंने कहा ये कंपैरिजन करें, अब आधे लोगों को तो याद भी नहीं रहना कि उसके बाद क्लास में कहा क्या गया था। लेकिन जिनको इल्म हासिल करने का शौक होता है ना, जो समझते हैं कि वाकई इल्म एक खजाना है, इल्म अंबिया की विरासत है, मैंने नबियों की विरासत लेनी है, मुझे इसका शौक लग गया, वो फिर चैन से नहीं बैठते, वो ये किताब खोलेंगे, एक उसको कंगालेंगे, उसको कंगालेंगे। हम ऐसे अक्सर के घरों में तो कोई दीनी कुतुब भी नहीं होती, कोई तफसीर ही नहीं होती, देखेंगे किसको, कंसल्ट किसको करेंगे। तो ये शौक अपने अंदर, जैसे कपड़ों के शौक होते हैं, हम अपने मुल्कों में जाते हैं, कब बाजारों में चल पड़ते हैं कपड़ों के लिए, इससे ज्यादा शौक होना चाहिए किताबों का, किताब लूं कोई अच्छी, उसको पढूं। तो इल्म ऐसे ही नहीं आ जाता, ठीक है, इल्म के लिए ये मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि लास्ट टाइम किसी ने सवाल किया था कि कैसे ये इल्म हासिल करें हम ज्यादा। कायम बिल किस्त, कायम रखने वाला है किस्त को, यानी कायम रखने वाला है, वो ये भी गवाही देते हैं, वो शाहिद अल्लाह अल्लाह गवाही देता है, और ये मलाइका और उल इल्म गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, और क्या गवाही देते हैं, और ये कि वो अदल को कायम रखने वाला है। क्या मतलब अदल को कायम रखने वाला है, मतलब है कि उसकी जो सारे अहकामात है वो अदल पे मबनी है, उसके सारे फैसले अदल पे मबनी है, उसकी शरीयत अदल पे मबनी है, उसने जितने हुक्म दिए हैं, जितने तकदीर के फैसले, सब अदल पे हैं, इंसाफ है, इंसाफ है उनके अंदर, उसने ये जो कायनात का निजाम बनाया ना, इंसाफ के साथ बनाया है। हम आजकल, अल्लाह माफ करे हम सबको, कि वो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि एक सर्वे हुआ था जिसमें पूछा गया था मुस्लिम कंट्रीज में कि आपको शरीयत चाहिए, कि आपकी शरीयत नाफिस कर दी जाए, तो अफसोस से कहना पड़ता है कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि 100% तो छोड़ें, कहीं 90% 70% भी कोई लोग हों जिन्होंने कहा हाँ हमें शरीयत चाहिए, और ये कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह को इलाह मानने में ये भी है कि उसके हर हुक्म को, उसकी हर फैसले को, उसकी शरीयत को दिल से माना जाए, और ये समझा जाए कि ये इंसाफ है, यही इंसाफ है, यही हक है। ये नहीं कि हमारे दिलों में तंगी हो के हाय शरीयत ना कहीं आ जाए, अरे उससे हम इतना डरते हैं कि शरीयत आ गई ना कि जैसे हमारे ही हाथ कट जाने। भाई गलत कोई करेगा तो उसका हाथ भी कटेगा, चोर का, जो जिना करेगा उसको कोड़े भी लगेंगे, ये कुछ सारे इस तरह के कारोबार नहीं चल सकेंगे वो जो हराम के चल रहे हैं। तो लेकिन हम ऐसे डरते हैं क्योंकि अपने अंदर चोर है ना हमारे, तो हमारे फन ना कहीं खत्म हो जाए शरीयत आ गई तो अफसोस है कि हमें अपने अल्लाह जिसको हमने इलाह माना, उसके बनाए हुए कानून के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, और उसको भी हम पसंद नहीं करते, पर वैसे ला इलाह इल्लल्लाह की तस्बीहां जितनी मर्जी करा लो, कितनी मर्जी करा लो, ला इलाह इल्लल्लाह की तस्बीहां हमें अपना ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ पढ़ के हम रख रहे हैं जी, हमने तो मर जाना है तो फिर उसके बाद हम तस्बीहां पढ़ पढ़ के अभी से रख रहे हैं, कई लोगों को ये भी कहते सुना। सोचो कि वो रब, ये उलिल इल्म और मलाइका ये गवाही देते हैं कि वो रब कायम है किस्त पे, उसके हर फैसले में इंसाफ है, क्यों सोचते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ बेइंसाफी कर देगा, उसने ऐसा कोई कानून बना दिया जिसमें तुम्हारे लिए कोई अदल नहीं है, कोई इंसाफ नहीं, लोगों के कानून में इंसाफ है वो तुम्हें गवारा है, अल्लाह के कानून में इंसाफ नहीं समझते। सवाल करें अपने आप से, हम में से सब जो तंग बैठे हुए हैं, उन वो ना शरीयत समझे जो कोई लोग शरीयत का नाम दे के उसको एक्सप्लॉयट करते हैं और गलत काम करते हैं, वो बात नहीं है, शरीयत अल्लाह का कानून है। कितने लोग हैं जो इसको तहे दिल से कहते हैं कि हाँ हमें कबूल है ये, हम इसे डरते नहीं हैं, हमें तो खुशी से है, हम जो चाहते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज में ही शरीयत नहीं है, और कहीं क्या होनी। तो देखें अल्लाह ताला की शरीयत, वो भी उसमें भी इंसाफ है, उसके जो फैसले हैं मेरे लिए, जो तकदीर के उसने फैसले किए हैं, वो उसमें भी इंसाफ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ना अल्लाह ने मेरे लिए ये कैसा फैसला कर दिया, ये क्यों कर दिया, मेरी तकदीर में ऐसे क्यों लिख दिया, नहीं, वो कायम बिल किस्त है। दूसरा, ये बैलेंस को भी किस्त कहते हैं, उसने बैलेंस रखा है हर चीज में, उसने बैलेंस रखा है इस कायनात में, अदल से चीज चल रही है, इसीलिए आप देखें ना इस कायनात में कितनी हारमनी है, इंसाफ है उसके पास, वो इंसाफ पे कायम है, और ये गवाही ये सब देते हैं कि वो इंसाफ पे कायम है, वो वो खुद भी अदल करता है और हमसे भी एक्सपेक्ट करता है कि हम भी अदल करें अपनी जिंदगियों में, इंसाफ करें। लेकिन आज देखिए मुसलमान ही जो कहते हैं, जो कहे उलुल इल्म कहते हैं मुसलमान, तो पता नहीं कौन से कहते होंगे या नहीं कहते होंगे कि अल्लाह ताला कायम बिल किस्त है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगियों में कितना इंसाफ है, हम अपने घरों में कितना इंसाफ करते हैं, हम अपनी सोसाइटीज में कितना इंसाफ करते हैं, हमारे खानदानों में कितना इंसाफ हो रहा है, छीना झपटी हकदार का। देखिए ना इंसाफ का उलट क्या है, जुल्म। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता। अगर जुल्म किसी काफिर पे भी किया जाए, वो भी अगर मजलूम है, उसकी भी आह को अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह के और उसके दरमियान पर्दा नहीं है, चाहे काफिर मजलूम हो। हम ये नहीं समझते कि काफिरों पे जुल्म करना वो ठीक है, क्योंकि ये काफिर जो है इसके ऊपर जुल्म करो अच्छी तरह, इससे छीना झपटी करो, नहीं, अल्लाह ताला कायम बिलकिस्त है पूरी, यानी हर एक के साथ आपने इंसाफ, चाहे वो मुशरिक है काफिर है कोई भी है उसके साथ इंसाफ। मगर हम तो अपने घरों में भी इंसाफ नहीं कर सकते, अपनी औलादों में इंसाफ नहीं करते, विरासत को तकसीम करने में इंसाफ नहीं है, उसमें भी अपनी मर्जियां चलाना चाहते हैं, कहीं इंसाफ नहीं नजर आता। जब सोसाइटी के अंदर तबकात बन जाते हैं, इंसाफ नहीं है। हमारे तो क्या महमूद और याज एक ही सफ में खड़े हो गए, हमारे तो क्या है कि हज के अंदर आप जाते हैं देखिए कैसे एक ही लिबास के अंदर सब है, कोई बादशाह है या कोई फकीर है एक ही सफ में खड़े हैं, ये है इंसाफ। लेकिन हमने क्या किया, काले गोरे की डिस्क्रिमिनेशन, बरादरियों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, जुबानों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, ये सब क्या, ये इंसाफ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आखिरी खुतबे में अपने फरमा दिए, किसी अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, किसी काले को गोरे पे और गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं हासिल, कोई फकीयत नहीं है, ये है इंसाफ। जबी तो बिलाल हबशी आ गए थे इस्लाम के अंदर, कि ये इंसाफ था इस दीन में, और उस माशरे में इंसाफ नहीं था। लेकिन हम तो उसी जगह पे बैठे हैं जो जाहलियत के माशरे थे, आज भी वही जाहलियत चल रही है, इंसाफ नहीं है। सास बहू के ऊपर जुल्म कर रही है, बहू सास के ऊपर कहीं जुल्म कर रही है, कहीं औलाद माँ बाप के साथ जुल्म कर रही है, कहीं इंसाफ नहीं नजर आता, कहीं माँ बाप अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ नहीं करते। तो अल्लाह कायम बिलकिस्त है, वो इंसाफ करने वाला है, इंसाफ के साथ खड़ा होने वाला है। इसलिए कभी ना ये सोचें कि अल्लाह का कोई फैसला बेइंसाफी पे होगा। आपको शायद कोई लग रहा हो इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ फलाने के साथ, ये तो बड़ा जुल्म हुआ। अल्लाह माफ करे कि हम मुंह से ऐसी बातें कैसे निकाल सकते हैं कि हमारा रब तो कायम बिलकिस्त है, हम कैसे कह सकते हैं कि उसने जुल्म कर दिया। कोई अंधे को देख लेंगे, हाँ इसके साथ तो बड़ा जुल्म है, अल्लाह ने उसको नहीं दी तो, उसको बिनाई नहीं दी तो अल्लाह का फैसला है, आप कैसे कह सकते हैं इसमें जुल्म। इंसान इंसानों पे जुल्म करते हैं, अल्लाह नहीं किसी पे जुल्म करता। मगर हाँ ये आप और मेरे जैसे इंसान हैं जो जरूर जिन्होंने जुल्म किया हुआ आज दुनिया में, तो इसलिए यह हाल है, इसलिए आज दुनिया में इतनी बेसकूनी बेचैनी और ये अजाब जो हम देख रहे हैं, ये हमारे अपनी बेइंसाफियां हैं जिनकी वजह से हम जुल्म करते हैं, अल्लाह नहीं जुल्म करता। ये आयत इस चीज की दलील है। और ला इलाहा इल्ला नहीं कोई इलाह मगर वही अल अजीज, जबरदस्त है, गलबे वाला है, अथॉरिटी वाला है, उसकी अथॉरिटी अल्टीमेट है, उसका इख्तियार वो है कि कोई उसको पूछ नहीं सकता अल्लाह तूने ऐसे क्यों किया, वो इतनी बड़ी अथॉरिटी रखता है, इतनी बड़ी पावर इख्तियार उसके हाथ में है, इख्तियार समझते हैं ना आप। और अल हकीम और हिकमत वाला है, ऐसे नहीं कि अपने इख्तियार को अलल टप इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी साथ जुल्म कर रहा हो किसी, नहीं हिकमत है। इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है, इसको हाईलाइट कर लें खुदा के लिए। वो लोग जो कहते हैं सारे ही ठीक हैं, नहीं आप क्यों किसी को कहते हैं कि वो भी गलत है, नहीं अगर आप मुसलमान हैं तो क्या आप ही ठीक हैं, देखिए ना किसी को ना कहें, वो हिंदू जो है वो भी असल में तो अल्लाह की इबादत करते हैं ना, देखें वो जो ईसाई है वो भी, ऐसी बातें मैं लोगों से सुनती सोचती हूँ, इन्होंने कभी पढ़ा भी है कि कुरान में है क्या, अल्लाह के नजदीक सिर्फ दीन है तो इस्लाम है, इस्लाम के बाद कोई और दीन अल्लाह के हाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अब मैं कैसे कह सकती हूँ, ये कैसे कह सकती हूँ। अब आप मुझसे पूछें कि भैया ये आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी तो नेक काम करते हैं, वो भी तो नेकियां इतनी कर रहे हैं, वो भी तो ऐसे करते हैं, वो तो फलां करते हैं, वो तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, अल्लाह माफ करे, वो तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, वो चाहे शिर्क करते हैं लेकिन अच्छे बहुत हैं वो, नहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं वमई यब तगी गैर अल इस्लामी दीनन, इसी सूरत के अंदर आप पढ़ेंगे आले इमरान, जो कोई भी अल्लाह के पास इस्लाम के अलावा कोई दीन लेकर आया फलई युकबला मिनहु, तो उससे कबूल नहीं किया जाएगा, वह हुआ फिल आखरत मिन अल खासिरीन, और वो आखरत में खसारा पाने वाला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जो यहूदी या नसरानी मुझ पर ईमान लाए बगैर फौत हो गया वो जहन्नमी है। बाकियों का तो नाम ही नहीं लिया, लगे उनका तो वैसे ही बेड़ा गर्क है, क्योंकि वो तो वैसे ही बुतों को पूजते हैं, या वो यही सिर्फ दो अध्यान ऐसे हैं ना जो अल्लाह के ऊपर भी ईमान रखते हैं, जो किताब वाले हैं, ये भी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर फौत हो गए तो जहन्नमी है। इससे पता चलता है कि आज ये अकीदा रख लेना कि अल्लाह एक है और उसके बाद कुछ अच्छे अमल कर लिए, ये इस्लाम नहीं है, इससे नहीं निजात मिलेगी आखरत में। इस्लाम क्या है? इस्लाम वो दीन है जिसकी दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। इस्लाम की दावत हर पैगंबर ने दी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके वो कंप्लीट हो गई, जिसमें तौहीद है, जिसमें रिसालत है, जिसमें आखरत पे ईमान है, जिसमें तमाम अंबिया को मानना है। तो अब ये नहीं चल सकता कि आप कहें कि बस एक अल्लाह को तो हम मानते हैं, जैसे कुछ आजकल लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि हम एक अल्लाह को मानते हैं बस, उसके बाद हमें और कुछ नहीं, और उससे आगे नहीं हमें कुछ कहोगे, प्रॉफिट्स या ये चीजें फिर इंसान को डिवाइड करती हैं, तो हमें इस तरह नो, ये इस्लाम नहीं है, याद रखिए। एक अल्लाह को मान लेना सिर्फ काफी नहीं है, जब तक इस्लाम में ना दाखिल हो रहा, और इस्लाम ये सब चीजों को मानना है। इस्लाम का मतलब और क्या होता है? सबमिशन, सबमिट कर देना। और कौन सी सबमिशन? इताअत। कौन सी इताअत? अनकंडीशनल, गैर मशरूत इताअत। ये नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं इताअत करूंगी, अब मैं नाराज हूं, अब मैं मुझे कुछ मिला ही नहीं, मुझे क्या फायदा, छोड़ो सब चीजें, नहीं, अनकंडीशनल, कंडीशंस नहीं लगा सकते आप, शराइत नहीं बांध सकते। इस्लाम का माना है इताअत करना, नंबर टू सलामती में दाखिल हो जाना, क्योंकि जब इंसान अल्लाह रसूल की इताअत करता है तो वो इस दुनिया में भी सलामती पाता है और आखरत में भी अजाब से सलामती पाता है। पीस ऐसे ही तो नहीं कहते, इस्लाम मीन्स पीस, इस्लाम मीन्स सबमिशन, तब आप कहें इस्लाम का मतलब क्या, हमें तो कभी आप पीस कहते हैं कभी ये कहते हैं, ये दो मानने हैं इसके। तो अब समझ आ गई कि अल्लाह ताला के हाँ सिर्फ ये एक्सेप्टेबल है, इन द इस्लाम, यानी सिर्फ ये आप दीन है, इसके बाद जब इस्लाम आ गया तो अब कोई और दीन एक्सेप्टेबल नहीं। वह मख्तलफ अल्लदीना ऊतुल किताबा, और नहीं इख्तलाफ किया उन लोगों ने जो किताब दिए गए, यानी किताब कौन दिए गए? यहूदो नसारा। उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया इल्ला मिन बादी मा जाअहुमुल इल्म, इस मगर इसके बाद के उनके पास इल्म आ गया, यानी यहूदो नसारा जो किताब वाले लोग हैं इन्होंने आपस में इख्तलाफ किया अपने अंदर ही भी, हो सकता है कि ईसाइयों ने अपने दरमियान ही, यहूदियों ने अपने दरमियान ही, या एक दूसरे के साथ इख्तलाफ किया, यहूदियों ने ईसाइयों के साथ, तुम कुछ नहीं हो, आपने सूरह बकरा में पढ़ा, ईसाइयों ने कहा तुम कुछ नहीं हो, एक दूसरे से इख्तलाफ किया, या मुसलमानों से इख्तलाफ किया, तो इख्तलाफ की डिफरेंट नौइयत हो सकती है, लेकिन इन्होंने तब इख्तलाफ किया। अफसोस की बात है, ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं था, ऐसा नहीं कि ये जाहिल थे, बल्कि इल्ला मिन बादी मा जाअहुम इल्म, इसके बाद के उनके पास इल्म आ गया हुआ था, फिर क्यों इख्तलाफ किया? इल्म आ गया बता, तो फिर क्या पॉइंट बनता था इख्तलाफ का? फिर ये पॉइंट बनता था कि फरमाया बगयम बैनहुम, आपस में जिद की वजह से, यानी बगी का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर गलबा पाने की कोशिश, मुकाबलेबाजियां जिसको नहीं हम कहते, यानी आप वो कहेंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बात बताई कि अगर हमने इस रसूल को मान लिया अबू हारसा ने का, तो फिर मान लिया तो फिर तो हमारी अपनी चौधराहट का क्या होगा, हमें कौन इज्जत देगा, इसी तरह ये आपस में जिदबाजी के, फिर मैं इसके ऊपर गलबा पा लूं। देखिए जब ना दीन दुकान बन जाता है ना, दीन दुकान बन जाता है, वाकई मेरी दुकान चमके ज्यादा, मेरा बिजनेस ज्यादा चले, मेरे पास ज्यादा लोग आए, अब चारों नाचार वो क्या करेगा? दूसरे की बुराई करेगा, दूसरे के अंदर कोई ना कोई ऐब ढूंढेगा, क्योंकि जब ऐब ढूंढेगा तो लोग उसकी दुकान छोड़ के मेरी दुकान पे आ जाए, वो तो ऐसा है, वो तो है, इस बेसिस के ऊपर फिर के इख्तलाफात, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, ये सब होता है, समझ आई? तो यानी लोगों ने, ये नहीं था कि उनके पास इल्म नहीं था, इन लोगों ने इख्तलाफ इसलिए किया क्योंकि ये अपनी अपनी जिद, अपने आप को ऊपर करना चाहते थे, अपने आप को गालिब करना चाहते थे, अपना सिक्का मनवाना चाहते थे, अपनी चौधराहट रखना चाहते थे। ये था मसला। इसकी वजह से आपस में भी इन्होंने एक दूसरे को कहा, आपस में भी इख्तलाफात किए, हसद, बुग्ज, इनाद, हक को जानने के बावजूद बस ऐसे अपने मफाद के चक्कर में गलत बात पे जमे रहते थे। हमने नहीं छोड़नी, ताकि उनकी नाक ऊंची रहे, अवाम के अंदर उनके फैन ज्यादा रहे। और अफसोस है कि आज मुसलमान उलमा की भी एक बड़ी तादाद इसी रास्ते पे है। इसीलिए आप देखते हैं ना कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया इन इन दीना इंदल इस्लाम, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? सबसे पहले तुम अपना फिरका बताओ कि तुम्हारा फिरका कौन सा है। सख्त नफरत है मुझे ये फिरका वारियत से। असहाबा में भी इख्तलाफात होते थे, वो भी एक दूसरे से डिफर करते थे ओपिनियन में, लेकिन वो फिरके नहीं बना के बैठ जाते थे कि कोई फारूकी है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने अपना फिरका बना लिया फारूकी। हाँ, या आप देख लें, सॉरी, उमर फारूक ने अपना फिरका बना लिया फारूकी, अबू बकर सिद्दीक ने अपना फिरका बना लिया सिद्दीकी, किसी और ने किसी और फिरका बना लिया, अपने अपने नाम दे के अपने फिरके और आपस के अंदर लड़ाइयां शुरू कर दी। ऐसा कुछ आपने देखा सहाबा में? लेकिन हमारे यहाँ देखें ये कितना प्रॉब्लम है कि एक दूसरे को देख के भी राजी नहीं है, एक दूसरे से इतनी नफरतें हैं, और अपने हार उनके दर्स के अंदर बस उन्होंने इसी चीज को हाईलाइट करना होता है। ये फलाना देखें वो कैसे करते हैं, फलान देखें वो कैसे करते हैं। वो आप सही दीन तो पहुंचाओ, सही दीन पहुंचाने की नहीं फिक्र है, ज्यादा उन ऐसे मदारिस के अंदर नफरतें भी पैदा की जाती हैं दूसरे फिरकों से। और फिर उसके बाद क्या होता है? यही झगड़े, फसाद, असल चीज को छोड़ा हुआ है। हमने क्या दूसरों को जाके तबलीग करनी है? हम तो अपने अंदर के ही मसले नहीं हल कर सकते। और क्या इनको पास इल्म नहीं है? इल्म है, जहालत की वजह से तो नहीं ऐसे कर रहे। बस ये फिर अब हम फिर यानी जिसको मुमताज को क्या इंग्लिश में कहेंगे, कि हम किस तरह फिर प्रोमिनेंट होंगे अगर हम दूसरे को नहीं लेट डाउन करें। कि ना अब मैं कहूँ सारे ही अच्छे हैं तो फिर मेरी क्या रह जाएगी? मैं जब कहूंगी ना वो तो उनके अंदर ये मसले हैं, वो तो इतने बुरे हैं, तभी आप कहेंगे हाँ वाकई इधर नहीं जाना, इधर ही रहो। समझ आए? ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जो इस उम्मत में भी हुआ है। अच्छा, एक बात और मैं कहना भूल गई, बताना भूल गई आपको कि दीन का क्या मतलब होता है। दीन मजहब ठीक है, लेकिन दीन का मतलब है वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। अल्लाह के नजदीक वे ऑफ लाइफ इज ओनली इस्लाम। आपको पता है ये भी सवाल हमसे कब्र में होना है। कब्र में जो तीन सवालात होने हैं ना, उसमें एक हमारे लिए ये भी सवाल है, तुम्हारा दीन क्या है, यानी तुम्हारा वे ऑफ लाइफ क्या था। उसमें ये रटा हुआ क्वेश्चन यहाँ से नहीं याद करके जा सकते कि मेरा दीन इस्लाम है। वो ही बोल सकेगा जिसने वाकई इस्लाम को अपना दीन बनाया, अपना वे ऑफ लाइफ बनाया, अपना उठना बैठना, खाना पीना, अपनी इकोनॉमी, अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके, अपने ट्रांजेक्शंस, अपनी डीलिंग्स, चाहे माल की है चाहे लोगों के साथ वैसे हैं, हर तरह की चीज को इस्लाम के ताबे किया। कि मेरी जो डीलिंग होंगी वो जो मेरी पसंद नापसंद की बेस पे नहीं है, बल्कि वो मैं अल्लाह से पूछूंगी कि कैसी होनी चाहिए। जिसको अल्लाह एक्सेप्ट करता है वो है दीन। ठीक है, तो हमारी जिंदगी के मामलात में कितने मामलात ऐसे कि वो वाकई अल्लाह को भी एक्सेप्टेबल होंगे? रहना सहना खाना पीना पहनना ओढ़ना शादी ब्याह ये सब चीजें कितने मामलात हैं? क्योंकि दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम ही है, वे ऑफ लाइफ इज ओनली इस्लाम। बहुत लोग तो इससे सेटिस्फाइड भी नहीं है कि वे ऑफ लाइफ इस्लाम हो हमारा, वो तो इससे उनको बहुत मतलब एलर्जी सी होती है और दम घुटने लगता है, क्या ये वे ऑफ लाइफ बस इस्लाम हो, हमारा तो वे ऑफ लाइफ वेस्टर्न होना चाहिए। वेस्टर्न से मतलब ये नहीं कि वेस्ट में सारे को बुराई ही है, मगर वेस्टर्न से मतलब ये है कि जो लोग आपे से बाहर निकले हैं उनका वाला वे ऑफ लाइफ हमें पसंद है, ये तो हमें रिस्ट्रिक्टेड लगता है। तो फिर खुद सोच लें कि हमारा क्या हाल है, तो क्या कब्र में हम जवाब देंगे उसके बाद? अगर हमें ये पसंद ही नहीं है, अपनाएंगे क्या उसको? पहले तो पसंदीदगी आए, पहले तो एक्सेप्ट तो करें। एक्सेप्टेंस दिल में अगर नहीं है तो फिर कैसे उस वे ऑफ लाइफ को अपनाएंगे? ये अब हम इसमें नहीं सोचें कि अब हुकूमती लेवल पे ये होगा तो फिर इंडिविजुअल्स, आप मैं, हमारे घरों के अंदर, हमारे मामलात के अंदर, हमें इंसाफ पे कायम रहने से कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है आके? हमें वे ऑफ लाइफ इस्लाम अडॉप्ट करने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा, मगर अंदर है ना मुश्किल, तो इसलिए हम बाहर पे डाल देते हैं। नहीं, जब हुकूमत ऐसी होगी, जब ये होगा, जब इस्लाम का बोलबाला होगा, जब सारे लोग ये करने लगेंगे, तब मैं भी कर लूंगी। नहीं, आपको आज भी कोई नहीं रोक रहा, आप अपने लेवल पे तो करें ना। हम अपने लेवल पे भी नहीं करते, हमें नहीं खिलाफत चाहिए टू डू ऑल दीज। हमें अपने लेवल पे, अपने घरों के अंदर कौन सी खिलाफत चाहिए हमें ये करने के लिए? नहीं चाहिए। हाँ, आ जाती है तो अच्छा है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहना कि तो कोई खिलाफत नहीं आई, तो तुम बेचारे का क्या कसूर है? तो इस इंतजार में ना बैठे रहे। वमन यकफुर भी आयात अल्लाह फइन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और जो कोई कुफर करेगा अल्लाह की आयात के साथ, तो अल्लाह बड़ा जल्द हिसाब लेने वाला है। पहले क्या आया था? शदीदुल आदाब, शदीदुल एकाब पहले आया था ना इसी सूरत में, कि अल्लाह ताला फिर बड़ी सख्त सजा देने वाला है। अब आया अल्लाह बड़ा सख्त जल्दी हिसाब लेने वाला है, यानी फिर जल्दी हिसाब हो जाना। ये ना सोचना कि अभी बड़ी दूर है कयामत और फिर देखी जाएगी। फइन हाजू का, फिर अगर वो आपसे झगड़ा करें, ए नबी, अगर ये लोग आपसे झगड़ा करें इस बारे में आके कि तुमने कहाँ से ये कर लिया, और बहसें करने लगे दीन के मामले में, क्योंकि बाज लोगों के सिर्फ काम होता है बहस करना, वो सीखना कुछ नहीं चाहते। आपको भी ये देखना चाहिए कि मैं इल्म ले रही हूँ ना, तो बहसें करने के लिए ना ये इल्म लूँ, कि जिस मजलिस में जाऊँ वहाँ पे बहस शुरू कर दूँ, वो वाले शोशे निकाल निकाल के लेकर आऊँ, जिसका मुझे पता है कि अब ये, इससे मैं अपनी जरा काबिलियत बताऊँ ना, कि देखो मैंने कितना अच्छा सीखा है। तो बाज लोगों, जब नया नया दीन, ये बड़ी खतरनाक बात होती है, जब नया नया हम सीखने लगते हैं ना, दीन समझने लगते हैं, इल्म लेने लगते हैं, तो फिर जहां बैठते हैं वहां पे हम ना कोई ऐसी चीज निकाल के ले आते हैं कि लोगों को हक्का बक्का रह जाएं और हमारी तरफ देखें और हमसे सुने, और हम नहीं नहीं कोई बात निकाल लाएं, और फिर वो बहसें करते हैं। बहस में नहीं उलझना, यहाँ पे बता दिया गया इस्लाम में ये आपका काम क्या है, वो आगे आ रहा है, मगर जब कोई बहस करे तो आगे से क्या जवाब देना? फकुल असलम तु वजहिया लिल्लाही, मैंने, आप ए नबी कह दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया, आप कह दे मैंने सुपुर्द किया अपनी जात को, अपने चेहरे को अल्लाह के लिए। चेहरा जब कह दिया ना, तो चेहरे में सब कुछ आ गया, मेरी जुबान, मेरी आंखें, मेरा दिमाग, ठीक है, ये सब चेहरे में है। मैंने अपने आप को अल्लाह के आगे सबमिट कर दिया, ये आपका जवाब होना चाहिए। यानी मुझे तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया भाई, मैं तो वो मान रही हूँ, मुझे नहीं इन चीजों से कुछ, मुझे झगड़ा नहीं करना। ये नहीं कि बहस में बहस किए जाए, ये नहीं कि बाल की खाल उतारे। वह मन तबाअनी, और जिसने मेरा इत्तबा किया, ये नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ए नबी आप कह दें कि मैंने भी अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दिया, और जिसने मेरी इत्तबा की वो भी इन्हीं लाइंस पे चलने वाला है, वो भी मुझे इसी तरह फॉलो करता है, कि वो भी जो मेरा फॉलोअर है, इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो मेरा फॉलोअर है वो भी क्या करता है? वो भी असलम तू वजही अलिल्ला, वो भी कहता है मैंने अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दिया। बस ना मैंने कोई मुकाबले करने हैं यहाँ पे ना, देखिए पिछले लोग क्या कर रहे हैं, मुकाबले, मुकाबलेबाजियां चल रही, जिदें चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर गलबा पाने की, मैं जब डिबेट हो रही हो तो मैं ऊपर आ जाऊं, मैं विन करूं, तो वो नहीं ऐसे करते हैं। वो बात पहुंचाते हैं और वो कहते हैं कि बस आप जितनी भी बहस करना चाहें, मैंने अपना चेहरा अल्लाह के आगे सबमिट कर दिया, यानी मैं अल्लाह की इताअत गुजार हूँ, मुझे तो जो बात समझ आई है, जो बात अल्लाह का हुक्म है, बस मैंने तो वो मानना है, ना तफरकाबाजी में पड़ना है, ना कोई और बहसों में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया, आपको भी यही हुक्म हुआ, और आपको ये हुक्म हुआ कि आप कह दें कि मेरे फॉलोअर्स भी यही करेंगे, वो भी ऐसा ही काम करने वाले हैं। वकुल लिल्लदीना ऊतुल किताब वल उम्मीना असलम तुम, आप कह दीजिए उन लोगों से जो दिए गए किताब, वो अपने आप को पढ़े लिखे समझते थे जो किताब दिए गए थे, वल उम्मीना, और उम्मी लोगों को कह दें, वो जो मुशरिकीन मक्का थे ना, उनको ये लोग उम्मी समझते थे जो अहले किताब थे, कि तुम क्या हो, तुम्हारे पास तो कोई किताब ही नहीं, असल तो किताब तो हमारे पास आई है, हम मैं पढ़े वाले लोग, आप दोनों से कह दें। और हमारे जमाने में क्या, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स, अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं कि हम, हमारे पास इतनी डिग्री हैं, और जो नहीं कुछ पढ़े हुए, असलम तो क्या तुम इस्लाम लाए, क्या तुमने अपने आप को सबमिट कर दिया, सुपुर्द कर दिया अपने आप को, फ इन असलमु, फिर अगर वो सुपुर्द कर दें, वो सबमिट कर दें, फकत देता था तो वो हिदायत पा गए। देखिए ना, जो अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर दे, झुका दे, इस्लाम क्या है बताएं, इस्लाम क्या है? इस्लाम है अपनी मर्जी, अपनी अकल, अपनी समझ, अपना इरादा, अपनी खुशी, अपना गम, सब कुछ अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के ताबे कर देने का नाम, ये है इस्लाम। अगर नहीं आज तक पता था तो अब पता कर लें कि जिस मजहब को हम मानते हैं वो क्या चीज, क्या है वो, उसकी हमसे क्या डिमांड है, समझ आई? हाँ, ये नहीं कि हम इस मजहब को अपने मुताबिक एडजस्ट करें, हमने अपने आप को इसके मुताबिक एडजस्ट करना है, हमने अपने आप को इसके मुताबिक लाना है, ये नहीं कि इसको ट्विस्ट करके और अपने मतलब का बनाए, समझ आई बात? तो असलम तुम, या तुम इस्लाम लाए, तुमने अपने आप को अब इस डेफिनेशन के अंदर देखें, क्या तुमने सरेंडर कर दिया अपनी हर चीज को कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगी, वह असलम हो फकत देता तो। ठीक है ना, यही तो इम्तिहान है। आप कहते हैं बहुत मुश्किल है, तो आपका मतलब है जन्नत में जाना आसान है? दिल में ये जो तंगी आ रही है ना, इसको दूर कर देंगे? बहुत मुश्किल है, नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कहना आसान है करना बड़ा मुश्किल है, नहीं ये शैतान की बातें हैं, करना बड़ा मुश्किल है, नहीं करना मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने ये दीन इंसानों के लिए ही उतारा है और कयामत तक के लिए ही उतारा है, ये इसके लिए नहीं है कि कुछ 4 दिन के लिए, ये उस जमाने के लिए नहीं था सिर्फ, बल्कि ये कयामत तक के लिए है, और इसके ऊपर अमल करना भी मुमकिन है। अल्लाह ताला को वो कायम हम बिल किस्त है, वो कभी हमें ऐसे ही काम ना करने को कहता जो हम कर ना पाते, इंसाफ है उसकी सारी बातों में। तो अगर वो इस सपोर्ट करते हैं तो क्या है, फिर फरमाया फकत देखता तो वो हिदायत पा गए, उन्होंने राह पा ली, वह इन तबल्लो इन्नमा अलैकल बलाग, और अगर वो मुंह मोड़ जाए तो आपके जिम्मे क्या है, झगड़ना, बहसें करना उनके साथ, उनके साथ उलझना, नहीं आपके जिम्मे क्या है, अल बलाग, सिर्फ पहुंचा देना। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह देखने वाला अपने बंदों को, वो खुद ही देख लेगा, वो देख रहा है कि कौन मुंह मोड़ के जाता है, किसके दिल में तंगी आ रही है, कौन एक्सेप्ट करने को तैयार है, कौन कौन दिल में कुशादगी पाता है कि हाँ यही बेस्ट है, यही मेरे अल्लाह ने मेरे लिए दीन चूज किया, इसमें हर चीज, इसमें मेरे लिए हिकमत है, मेरे लिए बेहतरी है, इसमें किसके दिल में ये वसत है, और कौन है जो बस बोल तो रहे हैं कि हाँ इस्लाम हमारा दीन है, लेकिन उनका दिल नहीं चाहता कि इस्लाम के ऊपर चले, बस इस्लाम नाम का दीन काफी है कि हम इस रिलीजन के खाने में इस्लाम लिखते हैं, उसके आगे नहीं हमें चाहिए इस्लाम, कौन ऐसे हैं, अल्लाह देख रहा है, और बिल इबाद सारे बंदों को देख रहा है, सब ही उसके बंदे हैं ना। इन लदीना यकफुरूना भी आयात इल्ला, बेशक वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह की आयात का, इनकार करते हैं अल्लाह की आयात का, अल्लाह की आयात से बोझ व इनाद रखते हैं, अल्लाह की आयात उनको पसंद नहीं आती, अल्लाह के अहकामात उनके लिए लगते हैं कि अल्लाह माफ करे जालिमाना है, वह यकतुलून नबी ही ना बेगैर हक, और वो कत्ल कर देते हैं नबियों को ना हक, नबियों को ना हक क्यों कत्ल करते हैं, ना हक मतलब ये कि विदाउट एनी रीजन ऐसे ही बस कत्ल कर देना, ना हक क्या, ना ये उनका क्या कसूर है, कोई कसूर नहीं है, और उनको कत्ल करने, बनी इसराइल ने ये किया था ना, उन्होंने तो एक एक दिन में 40-40 अंबिया को कत्ल किया, उन्होंने इतने सारे नबी उनके पास आए जिनको कत्ल कर दिया था, क्योंकि उनको पसंद नहीं आती थी ना इनकी बात, देखिए आप यहीया अलैहि सलाम का वाकया, यहीया अलैहि सलाम को भी इन्होंने कत्ल किया था एक बादशाह ने अपनी माशूका के कहने पर, तो ये इस तरह इन्होंने बहुत जुल्म किए। तो अब वो पता है जो कयामत के दिन सबसे बड़ा अजाब उसको होगा जिसने किसी नबी को कत्ल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था ये, तो आपने ये फरमाया था, या नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले को जिसने कत्ल किया, फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई थी, फिर आपने फरमाया कि हज़रत अबू उबैदा से कि बनी इसराइल सुबह के अव्वल वक्त में 43 नबियों को कत्ल कर दिया था उन्होंने, तो बनी इसराइल के 112 इबादत गुजार उलमा खड़े हुए, उन्होंने उनको नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका, तो बनी इसराइल ने दिन के आखिरी हिस्से में उनको भी कत्ल कर दिया। ठीक है, तो ये उलमा को कत्ल करना, ये बनी इसराइल का ये भी एक तरीका रहा है, और आप सूरह बकरा में देख चुके हैं, वह यक्तुलून लदीन यामुरून बिलकिस्ती मिनन नास, और उन लोगों को भी कत्ल कर देते हैं जो उनको इंसाफ का हुक्म दे लोगों में से। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो लोग खड़े हुए, उन्होंने उनको बुराई से मना किया, उनको भी कत्ल कर दिया। अच्छा, आज अंबिया तो नहीं है, मगर अंबिया के वारिस किसको कहा गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमा जो है वो अंबिया के वारिस हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और भी हदीस है, आपने फरमाया मेरी उम्मत के जो उलमा है वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। ठीक है, कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी फजीलत। क्या फरमाया? मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। और आज आप देखें, ठीक है अंबिया नहीं है और ना ही कोई नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाला है, लेकिन जो भी बुराई से रोके और लोगों को इंसाफ करने की तरफ बुलाए, आज देखें कि उसके साथ क्या होता है। ऐसे उलमा को धमकियां दी जाती हैं, और ऐसे भी मुल्क हैं जहां पे ऐसे उलमा कोई बात कहें तो सबको पता है कि वो कौन से मुल्क हैं जहां पे ये होता है कि कोई उलमा कोई बुराई से मना कर दे तो वो उसको उठा के ऐसा गायब करते हैं, उसके बाद वो नजर ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि किधर चला गया, कत्ल कर देते हैं। इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे और इसका नाम नहीं है, बुराई से रोकना, भलाई का हुक्म देना, ये उलमा का काम है। और अगर इसके ऊपर उनको कत्ल कर दिया जाए तो वो क्या काम करेंगे अपना? आज आप अपने अपने आम जिंदगी में भी देख लें, आप किसी को बुराई से रोक के देखें, फिर वो क्या करता है? चलो कत्ल ना कर सकता है आपको, लेकिन फिर आपके साथ वो क्या करता है? आप नहीं कह सकते किसी को रोकना, किसी को मना करना, किसी को सिर्फ यही कह देना कि ये बुरा काम है, ये ना करो, फिर देखें। तो ये चीज आज इतनी ज्यादा हो गई है, कई हमारे मुल्क से उलमा को दूसरे मुल्कों में जाके पनाह लेनी पड़ी कि उनको इतनी धमकियां मिलने लगी। ये इतना बड़ा गुनाह है, और कई आप उलमा को देखें कि जिनको कत्ल कर दिया गया। आप बड़े डॉक्टर गुलाम मुर्तजा मलिक थे, हकीम सईद थे, कितने लोगों को इस तरह से कत्ल किया गया। तो ऐसे लोग जो ये काम करें, और इसमें एक ये भी बाज दफा कसूर होता है कि बाज दफा लोगों को फिरका वारियत में भी इतना उनको भड़का दिया जाता है कि वो दूसरे जाके उलमा को कत्ल कर देते हैं, या बाज दफा आम लोगों में से उनको पसंद नहीं आती कि ये बातें कही जाएं। और उलमा ही नहीं, यहां पे तो ये कहा गया ना, वो उनको कत्ल करते हैं जो किस्त का हुक्म देते हैं, वो चाहे उलमा हैं चाहे कोई और रिफॉर्मर्स हैं। आप देखें आज हमारे मुल्क के अंदर मिसिंग पर्सन का मामला क्या है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे इदारों को कुछ ऐसा कह दिया और उसके बाद उनको उठा लिया गया और फिर वो कभी नहीं मिले दोबारा। क्योंकि जब किसी का कह देना कि ये करप्ट हैं, ये गलत हैं, इनके इनका मुहासबा होना चाहिए, तो वो उनको कत्ल कर देते हैं। कई इदारे ऐसे होते हैं आप बोल नहीं सकते उनके खिलाफ कोई, वरना फिर अपनी खैर मना लें। फबशिर हम भी आदा बिन अलीम, तो जो इंसाफ की बात करने का हुक्म देता है, इंसाफ करने का कहता है कि इंसाफ करो भाई, ये गलत है, ये तुम लोग जो कर रहे हो ये सही नहीं है, जो सोशल जस्टिस का हुक्म देता है, जो अमर बिल मारूफ का हुक्म देता है, देखिए जो किस्त है ना वो हर जगह पे ही है ना, उसके खिलाफ आवाज उठाना कि ये जुल्म हो रहा है भाई, ये नहीं करो, ये जुल्म है, ये गलत है, फिर ऐसे लोगों को, बेचारों को तो क्या उनका हाल किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया जाता है, कभी उनके बायकॉट कर दिए जाते हैं, कभी उनको कत्ल कर दिया जाता है, कभी वो मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। आप कह के देखें कि नहीं जी आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप अपने खानदान में कह के देखें कोई जुल्म हो रहा, ये आप इंसाफ नहीं कर रहे, ये गलत है। देखिए जैसे हमने अभी बात की कि बच्चों के अंदर नहीं कोई इंसाफ कर रहा, या बच्चे वालदैन के सिलसिले में नहीं इंसाफ के साथ काम ले रहे, या सास बहू की कोई बात है वो एक दूसरे के ऊपर कोई जुल्म कर रही है, तो वहां पे आप कोई आवाज नहीं उठा सकता, वरना बायकॉट है उसका।
तो सिर्फ हुकूमतों की लेवल पे नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे भी यही हाल है। उलाइकल्लदीन हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, और जो तो कत्ल कर देते हैं उनको फरमाया फबशिरुन, उनके लिए तो बशारत है दर्दनाक अजा की। बशारत क्यों कहा गया, बशारत तो खुशी की खबर को कहते हैं, इसलिए कहा गया कि एक तंज है उनके ऊपर कि जैसे कहते हैं ना ड्राइंग रूम की सैर जेल को कह देते हैं या थाने को, तो इस तरह से उनको कहा गया कि अब तुम्हारे लिए तो ये खुशखबरी है, फिर लो ये खुशखबरी, और उनके सारे अमल जाया हो गए दुनिया में भी और आखरत में भी, यानी उनकी नेकियों का दुनिया में भी उनको सवाब या कोई सिला नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कोई दुनिया में अच्छा करता है ना तो उसको दुनिया में भी उसके असरात मिलने लगते हैं, उसको दुनिया में भी उसके कोई ब्लेसिंग्स उस नेकी के वो देखने लगता है, लेकिन उनके तो दुनिया में भी जाया और आखरत में तो कुछ मिलना ही नहीं। वह माल हम बिन नासरीन, और उनके लिए कोई भी मददगारों में से नहीं होगा, उनके लिए कोई उनकी मदद नहीं उस दिन करेगा जिसने ये हद कर दी कि उसने ऐसे किसी इंसान को कत्ल कर दिया जो किस्त का हुक्म देता है। उस बेचारे का क्या कसूर होता है, इंसाफ का ही कह रहा है कि भाई ये जुल्म ना करो, ये गलत है, तुम फलाने मतलब हुकूमत है, आप फलां मुल्क के अंदर ये जुल्म कर रहे हैं, आप ये फलां लोगों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म हो रहा है, ये नहीं करो, ये इंसाफ करो, खैर और भलाई की बात है ना, उसके ऊपर उसको मार देना, ये कितना बड़ा जुल्म है। सोचे कि अल्लाह ताला के हाँ उसकी इतनी बड़ी सजा है जो उनको कत्ल करता है, और ये इसको कुछ समझा नहीं जाता, गायब कर देते हैं, कुछ समझा नहीं जाता। कुरान उठा के देखें कि फिर उनकी क्या सजा है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए आप, अल्लाह ताला इन आयात पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
ایک بات یہاں پہ تلاوت سنتے ہوئے میرے ذہن میں آئی کہ دیکھیں یہاں پہ کہا گیا ہے انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے کیا ہے؟ پہنچا دینا. کیا ہے؟ پہنچا دینا. صرف آپ کے ذمے کسی کو منوانا نہیں ہے، کسی کے ساتھ بحثیں کرنا نہیں ہے، کسی کو اسلام کے اندر لا کے ہی چھوڑنا ہے یہ نہیں ہے، کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے. آپ کا کام پہنچا دینا. لیکن کیا ہم نے پہنچانے کا حق ادا کیا؟ آپ دیکھیں یہ کرونا وائرس ہے نا، یہ بتائیں اگر آپ کو پتہ چل جائے کسی کے پاس اس کی دوائی ہے، کوئی جانتا ہے اس کا کوئی نسخہ ہے، لیکن وہ کسی کو شیئر نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کیا کہیں گے ایسے آدمی کو؟ ظالم، سیلفش، بہت برا کہیں گے، خود غرضی ہے. یہ تو صرف ایک بیماری کے علاج کی دوا اس نے چھپا لی تو ہم اتنا غصہ کریں گے. اور سوچیں کہ اٹرنل لائف، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس سے، اس میں نجات کا، اس میں عذاب سے بچنے کا نسخہ آپ کے پاس اور میرے پاس ہے، اور ہم چھپا کے بیٹھے ہوئے اور کسی کو شیئر نہیں کریں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. سمجھنی چاہیے اپنی ذمہ داری، کیونکہ انسانیت پکار رہی ہے، انسانیت کہتی ہے ہم تک پہنچاؤ، پہنچانے والے سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کے لیے اناؤنسمنٹ ہے کہ الحمدللہ ہمارا نصف ہو گیا ہے یہاں تک، تو انشاءاللہ تعالیٰ وینسڈے کو آپ کا یہ نصف پارے کا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ ویب سائٹ پہ ٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں.